अरमान फाइल लेकर रेहान के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। सुबह का वक्त था और सड़क पर ट्रैफिक भी काफी था। एक बड़े चौराहे पर सिग्नल लाल हुआ तो उसे गाड़ी रोकनी पड़ी। उसी वक्त उसकी नज़र सामने खड़ी एक कार पर पड़ी। कार की ड्राइविंग सीट पर फैजान था और उसके साथ वाली सीट पर नूर बैठी थी। अरमान की आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। नूर? फैजान के साथ? उसके दिमाग में तुरंत सुबह की बात घूम गई। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा था कि नूर यूनिवर्सिटी जा चुकी है और उसे तो ये भी कहा गया था कि घर पर कोई नहीं है। अब सब कुछ साफ हो रहा था, मतलब उससे झूठ बोला गया था। सिग्नल हरा हुआ मगर अरमान के मन में बेचैनी बढ़ गई। उसने गाड़ी मोड़ी और रेहान के ऑफिस जाने के बजाय वापस घर की तरफ चला गया। कुछ ही देर में वो रेहान के घर पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर आया उसने देखा कि रेहाना बेगम हॉल में बैठी हुई हैं। अरमान हैरान रह गया क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ने तो कहा था कि घर पर कोई नहीं है। अरे अरमान, तुम कहाँ चले गए थे? रेहाना बेगम ने उसे देखकर पूछा। अरमान ने खुद को संभालते हुए कहा, जी मैं तो ऑफिस जा रहा था। रेहाना बेगम ने कहा, मैंने तो सिक्योरिटी गार्ड से कहा था कि तुम्हें बोल दे नूर को यूनिवर्सिटी छोड़ाना, मगर उसने कहा कि तुम तो जा चुके हो। अब अरमान सब समझ गया था, ये सब जानबूझकर किया गया था। शायद रेहान नहीं चाहता था कि वो नूर के साथ जाए। उसके चेहरे पर गुस्से की हल्की लकीर उभर आई मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस बिना जवाब दिए मुड़ा और तेज कदमों से वहां से बाहर निकल गया। उसके दिल में एक ही सवाल जल रहा था, आखिर ये सब खेल कौन खेल रहा है? सादिया धीरे धीरे चलती हुई रेहाना बेगम के पास आकर बैठ गई। क्या हुआ, आज बहुत चुप लग रही हो? रेहाना बेगम ने पूछा। सादिया ने हल्का सा मुंह बनाकर कहा, आप मुझसे ज्यादा नूर को अहमियत दे रही हैं ना, जानबूझकर मेरी इंसल्ट कर रही हैं उसके सामने। रेहाना बेगम ने उसे गौर से देखा। तुम सुबह नाश्ते वाली बात कर रही हो? सादिया चुप रही मगर उसके चेहरे से साफ था कि वो उसी बात से नाराज है। रेहाना बेगम ने गहरी सांस ली। खुद सोचो सादिया, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी? फिर उन्होंने थोड़ा सख्त होकर कहा, तुम मेरे लिए कितनी अजीज हो ये तुम जानती हो, तुम मेरे बेटे की बीवी हो। कुछ पल रुककर उन्होंने आगे कहा, और सुनो, इस घर में, इस खानदान में अगर कोई सांस भी लेता है तो मुझे पता चल जाता है। सादिया का दिल हल्का सा धड़क उठा। तुमने ज़ुबैदा बेगम से, यानी अरमान की माँ से क्या कहा था? तुमने उनके कान भरे थे ना? सादिया एक पल के लिए घबरा गई। नहीं ताई अम्मी, आपको गलतफहमी हुई है, उसने जल्दी से कहा। असल में उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। रेहाना बेगम ने शांत मगर गहरी आवाज में कहा, देखो सादिया, शुक्र करो कि ज़ुबैदा बेगम ने ये सब बातें रेहान से नहीं कहीं। सोचो अगर उसे पता चल जाता तो क्या होता। ये बात कहते वक्त उन्हें खुद भी नहीं पता था कि रेहान तो ये सब उनसे भी पहले जान चुका है। मगर इस वक्त रेहान को किसी और बात की परवाह नहीं थी। उसकी फ़िक्र अगर किसी के लिए थी तो सिर्फ नूर के लिए। रेहाना बेगम ने आगे कहा, सोचो अगर रेहान को ये पता चल जाता कि जिस लड़की की जिम्मेदारी उसने ली है उसी को उसकी बीवी बदनाम कर रही है, तो उसे कितना गुस्सा आता। तुम रेहान के गुस्से को अच्छी तरह जानती हो। सादिया चुपचाप सिर झुकाकर बैठी रही। देखो सादिया, सब ठीक कर लो, नूर के साथ अच्छा बर्ताव करो, सब ठीक हो जाएगा। रेहाना बेगम का दिल आखिर माँ का था। वो सादिया को समझा रही थी क्योंकि वो उनके बेटे की बीवी थी। जीता यम्मी, सादिया ने धीरे से कहा, मेरी गलती है, मैं उसे माफ़ी मांग लूंगी। असल में सादिया ये कहना नहीं चाहती थी लेकिन इस वक्त यही कहना ज़रूरी था। रेहाना बेगम ने सिर हिलाया। अभी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, बस अपना बर्ताव ठीक रखो। आगे से ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे तुम्हारी शिकायत आए, समझी? जीता यम्मी, सादिया ने कहा। उसके चेहरे पर पछतावे का भाव था मगर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही वो वहां से उठकर बाहर निकली उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी, उसने मन ही मन सोचा, कि आपको पछताना पड़ेगा कि आपने नूर को इस घर में इतना प्यार दिया। और ये सोचते हुए सादिया धीरे धीरे वहां से चली गई। अरमान बहुत कुछ समझ चुका था। उसे अब साफ लगने लगा था कि नूर और उसके बीच दूरी पैदा की जा रही है। इसी सोच के साथ वो सीधे रेहान के ऑफिस पहुंच गया। रेहान अपने केबिन में कुर्सी पर बैठा हुआ था। अरमान अंदर आया और सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। आपकी तो आज सुबह से लगातार मीटिंग्स थी, अरमान ने कहा, ऐसा ही बताया गया था। रेहान ने बिना ज्यादा भाव बदले छोटा सा जवाब दिया, पोस्टपोन हो गई। अरमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपकी मीटिंग पोस्टपोन हो गई, आप तो अपना हर काम टाइम पर करते हैं। रेहान भी हल्का सा मुस्कुराया। पहली मीटिंग तो तुम्हारे साथ ही थी और तुम लेट हो गए, अरमान ने तुरंत जवाब दिया। मुझे लगा कहीं घर की तरह ऑफिस भी लॉक ना हो, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। उसकी बात में छुपा तन साफ था। रेहान ने उसे गौर से देखा। मैं तुम्हें बुलाकर ऑफिस लॉक क्यों करूंगा? अरे नहीं, अरमान ने छोटा सा जवाब दिया। फिर उसने हाथ में पकड़ी फाइल मेज पर रखी। वैसे ये फाइल जो सुबह मुझे दी गई थी, मुझे नहीं लगता ये आपके काम की है। असल में अरमान पहले ही अपने फोन में देख चुका था कि ये फाइल बेकार है, रेहान ने सीधे कहा। मैंने जानबूझकर तुम्हें बुलाया है, मुझे तुमसे बात करनी थी। मुझसे? अरमान हैरान हुआ। रेहान कुछ पल चुप रहा फिर अचानक पूछ बैठा, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? अरमान चौंक गया। क्या? उसने लगभग हंसते हुए कहा।
आपने मुझे ये पूछने के लिए ऑफिस बुलाया है? रेहान शांत आवाज में बोला। अगर है तो बता दो, मैं संभाल लूंगा। जहां तक हो सके तुम्हारी शादी भी करवा सकता हूँ। क्या कह रहे हैं भाई आप? अरमान ने कहा। असल में वो नूर का नाम लेना ही नहीं चाहता था। सच तो ये था कि वो अभी नूर को पसंद करने लगा था, लेकिन निकाह जैसी बात अभी बहुत दूर थी। अभी मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ, अरमान ने कहा। शादी के बारे में नहीं सोच रहा। रेहान ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर ऐसा है। फिर उसकी आवाज़ अचानक ठंडी हो गई। तो अब नूर से दूर रहो। अरमान ने तुरंत सिर उठाकर देखा। इसके बीच नूर कहाँ से आ गई? उसने कहा। रेहान ने सख्ती से कहा। वो अपने घर से मेरे घर पढ़ने आई है, और अब वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें नूर के आसपास नहीं देखना चाहता। अरमान को यह सुनकर गुस्सा आ गया। रेहान भाई, आपको क्या हो गया है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? रेहान की आवाज़ और सख्त हो गई। नूर मेरी जिम्मेदारी है। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ, उसने अरमान की आंखों में देखते हुए कहा, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये साफ धमकी थी। अरमान ने तुरंत कहा, मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा। आप उससे पूछ सकते हैं, हम बस दोस्त हैं। रेहान ने हाथ उठाकर बात खत्म की। इन सब बातों को छोड़ो, कल सुबह साइट पर जाकर देखो काम कैसा चल रहा है। वो उसी प्लॉट की बात कर रहा था जो अरमान का था। अरमान ने हैरानी से कहा, मगर वो तो ठेके पर दिया हुआ है, ठेकेदार देख रहा है सब, मुझे वहां जाने की क्या जरूरत है? रेहान ने धीमे मगर गंभीर लहजे में कहा, मैं तुम्हें वहां किसी फायदे के लिए नहीं भेज रहा, नुकसान से बचाने के लिए भेज रहा हूँ। अरमान हल्का सा हंस पड़ा। भाई, आज सूरज कहाँ से निकला है? आप तो आज मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, रेहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सूरज कहीं से भी निकले, डूबेगा वहीं जहां उसे डूबना है। अरमान को रेहान का यह अंदाज बिल्कुल समझ नहीं आया। रेहान ने आखिरी बात कही, कल सुबह 8 बजे साइट पर पहुंच जाना। इतना कहकर वो कुर्सी से उठा और बिना पीछे देखे अपने केबिन से बाहर चला गया। अरमान वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में अब एक ही सवाल घूम रहा था, रेहान अचानक नूर को लेकर इतना गंभीर क्यों हो गया है।